एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और एकत्र ज्ञान गोष्ठी में एक बार फिर स्वागत। आज हम एक ऐसे लेखक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही महानता का एहसास होता है, लियो टॉल्स्टॉय।
हाँ बिल्कुल।
लेकिन हम सिर्फ उनके मशहूर उपन्यासों पर ही नहीं रुकेंगे। आज हम लिज़ा नैप की एक बहुत ही दिलचस्प किताब के जरिए उनकी जिंदगी, उनकी सोच, उसके गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब उन मुख्य स्रोतों में से एक है जिन पर आज हमारी चर्चा आधारित है।
जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लिज़ा नैप की किताब टॉल्स्टॉय की। ये क्रिटिकल लाइव्स नाम की एक सीरीज का हिस्सा है और लिज़ा नैप वो कोलंबिया विश्वविद्यालय में रूसी साहित्य की जानी मानी प्रोफेसर हैं।
अच्छा।
और उनका काम ना टॉल्स्टॉय को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, आज के दौर में टॉल्स्टॉय क्यों? मतलब उनकी बातें, उनके जीवन के संघर्ष, क्या वो आज भी हमारे लिए कोई मायने रखते हैं? शायद ये जो उनकी तलाश थी प्रामाणिकता की, अपनी सच्चाई को जीने की जद्दोजहद, ये एक ऐसी चीज है जिससे हम सब आज भी कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं ना?
बिल्कुल सही कहा। और लिज़ा नैप इस विषय पर बात करने के लिए एकदम सही इंसान है। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में स्लाविक भाषा विभाग में प्रोफेसर तो हैं ही।
हाँ
उनकी खासियत ही है 19वीं सदी का रूसी साहित्य, और उसमें भी टॉल्स्टॉय और दोस्तोयेव्स्की लगता है उनके खास पसंदीदा हैं।
अच्छा।
उनकी पहले की किताबें भी काफ़ी चर्चित रही हैं, जैसे द एनिलिएशन ऑफ इनर्शिया और दोस्तोयेव्स्की इन द 21st सेंचुरी। और ख़ास तौर पर टॉल्स्टॉय पर भी उन्होंने पहले लिखा है, अन्ना कैरेनिना एंड अदर्स नाम से। हार्वर्ड से PhD है तो अकादमिक गहराई तो है ही।
लेकिन जैसा आपने कहा, उनकी खासियत सिर्फ डिग्री नहीं है, उनका नजरिया है। वो टॉल्स्टॉय को सिर्फ एक लेखक या सिर्फ एक व्यक्ति की तरह नहीं देखती।
सही।
वो दिखाती हैं कि कैसे उनकी जिंदगी और उनकी कला, मतलब एक दूसरे में गुंथी हुई थी। जैसे वो कहती भी हैं, जीवन को कला के चश्मे से देखना और कला को जीवन के।
बिल्कुल, कोई जजमेंट नहीं, बस एक पूरी तस्वीर सामने रखने की कोशिश। और सबसे बड़ी बात, वो रूसी भाषा जानती हैं,
हाँ ये महत्वपूर्ण है।
तो वो मूल टेक्स्ट को पढ़कर अपनी बात कहती हैं, किसी अनुवाद पर निर्भर नहीं रहती। उनका नज़रिया भी बड़ा दिलचस्प है, साहित्य, दर्शन, मनोविज्ञान, धर्म सबको समेट लेता है।
तो ये किताब असल में है क्या, मतलब इसका मकसद क्या है?
दरअसल नेप की कोशिश है एक संक्षिप्त पर गहरी आलोचनात्मक जीवनी पेश करने की। ये टॉल्स्टॉय के जो अलग अलग रूप थे, वो अमीर रईस, वो फौजी, वो पति, वो एक तरह के पैगंबर, और उनके अंदर का कलाकार, इनके बीच का जो जटिल अटूट रिश्ता है, उसे खोलती है किताब। साहित्य के छात्रों के लिए भी है और उन आम पाठकों के लिए भी जो जानना चाहते हैं कि भाई वॉर एंड पीस या अन्ना कैरेनिना लिखने वाले का दिमाग कैसे चलता था।
और अच्छी बात यह है कि ये उन मोटी मोटी कई वॉल्यूम वाली जीवनियों जैसी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में खोए बिना मुद्दे पर आती है।
हाँ बिल्कुल। ये किताब हमें टॉल्स्टॉय की जिंदगी के सफर पे ले जाती है। शुरुआत होती है उनकी बचपन से, यास्नाया पोलियाना के उनके घर से।
अच्छा।
फिर उनकी जवानी के दिनों की उथल पुथल, क्रीमिया युद्ध का वो तजुर्बा जिसने उन्हें कह सकते हैं बदल ही दिया, और फिर लेखक के तौर पर उनकी शुरुआती कामयाबी। इसके बाद आता है सोफिया बीहर से उनकी शादी का दौर, परिवार का बसना, और वो सुनहरे साल जब उन्होंने वॉर एंड पीस और अन्ना कैरेनिना जैसे मास्टरपीस लिखे।
लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है ना, बल्कि एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है।
हाँ बिल्कुल। नाप दिखाती हैं कि कैसे 1870 के दशक के आखिर में टॉल्स्टॉय एक गहरे आध्यात्मिक संकट से गुजरे।
अच्छा।
उन्होंने चर्च को, अपनी शोहरत को, सबको नकार दिया और ईसाई धर्म की अपनी एक बिल्कुल अलग, कह सकते हैं कट्टरपंथी व्याख्या गढ़ी। किताब के आखिरी हिस्से बताते हैं कि कैसे वो यास्नाया पोलियाना के संत जैसे बन गए, कैसे उनके नए विचारों ने उनके अपने परिवार में भूचाल ला दिया।
हाँ वो बड़ा दुखद लगता पढ़ने में।
और कैसे आखिर में वो, मतलब बड़े नाटकीय ढंग से, घर छोड़कर चले गए और एक अनजान से रेलवे स्टेशन पर उनकी मौत हुई। नैप की कोशिश ये दिखाने की है कि इन सारे उतार चढ़ावों के बावजूद टॉल्स्टॉय अंदर से एक ही थे। उनकी पूरी जिंदगी एक प्रामाणिक जीवन की तलाश थी।
तो चलिए अब नैप के विश्लेषण की कुछ और गहरी परतों को खोलते हैं। जो स्रोत हमारे पास हैं वो टॉल्स्टॉय की जिंदगी और नैप के विश्लेषण को कुछ खास हिस्सों में बांटते हैं। पहला दौर है उनके शुरुआती साल यानी 1828 से 1855 तक।
हाँ।
एक अमीर कुलीन परिवार में पैदा हुए लेकिन बचपन में ही माँ गुजर गईं। नैप का मानना है कि इस घटना का उन पर गहरा असर पड़ा। जिंदगी भर उनमें एक बिना शर्त वाले प्यार, एक आदर्श अतीत की एक तरह की कमी महसूस होती रही।
ये दिलचस्प है।
और उनकी शुरुआती डायरियां वो कमाल की हैं। उनमें वो अपने नैतिक संघर्षों से जूझते दिखते हैं। जुआ, वासना, घमंड, खुद का इतनी बारीकी से विश्लेषण करना, यही बाद में उनकी लिखने का तरीका बना।
हाँ, वो आत्मविश्लेषण उनकी पहचान बन गया।
फिर वो फौज में गए, काकेशस में रहे जहां उन्होंने द कॉसैक्स लिखी, फिर क्रीमिया युद्ध लड़ा जिसके अनुभव पर सेवास्तोपोल स्केचेस लिखी।
और उन कहानियों में उन्होंने युद्ध की असलियत दिखाई है ना, उसकी झूठी शानो शौकत को बिल्कुल उतार फेंका।
बिल्कुल, आम सिपाही के अंदर क्या चल रहा है उस पर फोकस किया। ये यथार्थवाद, ये रियलिज्म उनकी पहचान बन गया।
अच्छा, फिर अगला पड़ाव आता है जब वो अपनी जगह तलाश रहे थे। लगभग 1856 से 1869 तक का समय। फौज से लौटे तो मशहूर लेखक बन चुके थे पर बेचैन थे।
हाँ।
पश्चिमी यूरोप घूमने गए। वहां समाज में जो गैर बराबरी देखी और पेरिस में एक सरेआम फांसी होते देखी, इन सब ने सरकार और ये जो आधुनिक तरक्की का आइडिया है उस पर उनका भरोसा और कम कर दिया। यासनाया पुलियाना लौटकर उन्होंने एक बेहतर जमींदार बनने की कोशिश की और एक बहुत ही अनोखा काम किया, किसानों के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला।
हाँ, वो स्कूल वाला किस्सा बड़ा मशहूर है।
और उसका सिद्धांत बिल्कुल अलग था। आज़ादी से बिना किसी दबाव के बच्चे खुद सीखें। फिर 1862 में सोफिया आंद्रेवना बेहर्स से शादी हुई। नैप कहती हैं कि ये रिश्ता बहुत अहम और पेचीदा था।
13 बच्चे थे उनके।
हाँ, और सोफिया सिर्फ माँ नहीं थी, वो उनकी सेक्रेटरी, एडिटर, बिजनेस मैनेजर, सब कुछ थी। इसी दौर में जो स्थिरता मिली, परिवार और जमीन से जो जुड़ाव महसूस हुआ, उसने उन्हें वॉर एंड पीस जैसा महाकाव्य लिखने की बुनियाद दी।
अच्छा।
नैप दिखाती हैं कि कैसे टॉल्स्टॉय ने अपने परिवार के पुराने दस्तावेज खंगाले और इतिहास के बारे में अपने जो दार्शनिक विचार थे उनको इस उपन्यास में गूंथ दिया।
और फिर रचे गए वो महाकाव्य, पहले वॉर एंड पीस। नैप इस बात पर जोर देती हैं कि कैसे टॉल्स्टॉय ने इतिहास के ग्रेट मैन वाले सिद्धांत को चुनौती दी।
हाँ, कि इतिहास कोई एक हीरो नहीं बनाता।
बिल्कुल।
उन्होंने दिखाया कि इतिहास तो बस अनगिनत छोटे छोटे इंसानी कामों का एक अनियंत्रित, अप्रत्याशित सा नतीजा है। उपन्यास का जो दिल है वो पियरे बेजुखोव और प्रिंस आंद्रे बोलकॉन्स्की की आध्यात्मिक तलाश है। नैप के मुताबिक उन्हें जिंदगी का मतलब किसी बड़े सिद्धांत या जंग की शान में नहीं मिलता। कहाँ मिलता है?
प्यार के छोटे छोटे लम्हों में, परिवार के जुड़ावों में।
हाँ, और जिंदगी के उस सहज प्रवाह के साथ एक होने में जिसे वो रोएवो यानी झुंड जीवन कहते हैं। ये उपन्यास दरअसल कला के पर्दे में एक गहरी दार्शनिक खोज थी। और वॉर एंड पीस लिखने की जबरदस्त मेहनत के बाद टॉल्स्टॉय एक तरह की, कह सकते हैं, अस्तित्वगत निराशा में डूब गए।
अच्छा।
हाँ, और नैप का मानना है कि अन्ना कैरेनिना इसी निराशा की पैदाइश है। ये उपन्यास अन्ना के दुखद प्रेम संबंध के लिए मशहूर है, सही बात है। लेकिन नैप कहती हैं कि इसका असली केंद्र कॉन्स्टेंटीन लेविन की कहानी है,
जो काफी हद तक खुद टॉल्स्टॉय का ही अक्स माना जाता है।
बिल्कुल, लेविन के जरिए टॉल्स्टॉय अपनी उलझनों को टटोलते हैं। आस्था का क्या मतलब है, खेती बाड़ी, सामाजिक न्याय, परिवार, इन सबके मायने क्या हैं? नैप यहाँ एक तुलना करती हैं।
किसके बीच?
अन्ना के जुनून भरे रोमांटिक प्यार के बीच, जो उसे आखिरकार अकेलेपन और मौत तक ले जाता है, और लेविन की मुश्किल, अधूरी पर जिंदगी को हाँ कहने वाली तलाश के बीच। लेविन को मतलब मिलता है परिवार में, मेहनत में, और अचानक मिले आस्था के एक धुंधले से पल में। तो ये उपन्यास समाज के बंधनों और इंसान की इच्छाओं के बीच के टकराव पर एक गहरा चिंतन है, और उस आध्यात्मिक संकट का इशारा भी जो टॉल्स्टॉय को घेरने वाला था।
और फिर आता है वो बड़ा नाटकीय मोड़, लगभग 1878 से 1890 के बीच। उनकी किताब कन्फेशन में इसका जिक्र है, एक गहरा आध्यात्मिक संकट।
हाँ, उन्हें ये एहसास हुआ कि ना विज्ञान, ना दर्शन, और ना ही वो कला जिसने उन्हें दुनिया भर में मशहूर किया, कोई भी उनके सीधे से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था कि मेरी जिंदगी का मतलब क्या है।
तो जवाब कहाँ मिला उन्हें?
नैप दिखाती हैं कि टॉल्स्टॉय को इसका जवाब रूस के सीधे साधे किसानों की अटूट आस्था में मिला।
अच्छा।
उन्होंने चर्च के रीति रिवाजों और सरकार के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया। ईसा मसीह के पर्वत उपदेश को शब्दशः मानते हुए उन्होंने अपना एक नया कट्टर ईसाई दर्शन बनाया। 5 खास सिद्धांत थे उसके,
जैसे
गुस्सा मत करो और हिंसा से बुराई का विरोध मत करो। ये उनके बाकी जीवन के काम का आधार बने
और इसी वजह से उन्होंने अपनी महान साहित्यिक रचनाओं को भी बेकार कहना शुरू कर दिया।
हाँ, अपनी जायदाद, कॉपीराइट, अपने वर्ग की जीवन शैली सबको त्यागने की बात करने लगे। जाहिर है इससे उनके अपने परिवार में जबरदस्त और दर्दनाक टकराव पैदा हुआ। और फिर आया आखिरी दौर, यासनाया पोलियाना के संत और अंतिम त्रासदी, लगभग 1891 से 1910 तक। टॉलस्टॉय अब दुनिया भर में एक नैतिक और आध्यात्मिक आवाज बन चुके थे।
उनके अनुयायी भी हो गए थे टॉलस्टॉयन।
हाँ बिल्कुल, वो उनसे मिलने आने लगे। उन्होंने लगातार लिखना जारी रखा, लेकिन अब ज्यादातर गैर काल्पनिक लेख, कहानियां, निबंध। उनकी किताब द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, उसने तो महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसों को गहराई से प्रभावित किया।
क्या बात है।
ऐसा नहीं कि उन्होंने कहानियां लिखना बंद कर दिया, पर अब उनमें एक साफ नैतिक संदेश होता था, जैसे द डेथ ऑफ इवान इलिच।
वो तो दहला देने वाली कहानी है, एक गलत तरह से जी गई जिंदगी का लेखा जोखा।
बढ़ती त्रासदी को भी बड़े ध्यान से दिखाती हैं। उनकी पत्नी सोफिया, वो बेताबी से अपने बच्चों के भविष्य और विरासत को बचाने की कोशिश कर रही थी,
जबकि टॉलस्टॉय सब कुछ छोड़ देना चाहते थे।
हाँ, और इसमें उनके एक कट्टर अनुयायी थे व्लादिमीर चर्टको, उनका भी बड़ा असर था। उनकी डायरी और साहित्यिक विरासत पर झगड़ा बढ़ता गया, एक कड़वे लड़ाई बन गई
और अंत कितना दुखद था।
हाँ, ये तनाव इतना बढ़ गया कि 82 साल की उम्र में टॉलस्टॉय चुपके से घर से भाग निकले, शायद अपने विश्वासों के अनुसार जीने की एक आखिरी हताश कोशिश।
और फिर एक छोटे से स्टेशन पर,
हाँ, अस्तापोवो नाम के स्टेशन पर निमोनिया से उनकी मौत हो गई। ये घटना दुनिया भर में मीडिया सेंसेशन बन गई। एक अथक निजी तलाश का बड़ा मार्मिक और सार्वजनिक अंत था वो।
नाप अपनी किताब में कुछ खास विषयों पर बार बार लौटती है ना, कुछ मुख्य थीम्स हैं। पहला और शायद सबसे अहम, जिंदगी और कला का वो अटूट रिश्ता।
हाँ बिल्कुल,
टॉलस्टॉय के लिए लिखना सिर्फ कहानी कहना नहीं था, ये उनकी जिंदगी को समझने का, उससे जूझने का तरीका था। पीरे बेजुखोव या कॉन्स्टेंटिन लेवन के जो संघर्ष हैं, वो असल में टॉलस्टॉय के अपने सवाल थे
जिन्हें वो पन्नों पर हल करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल सही, उनकी कला उनके अस्तित्व की खोज से अलग थी ही नहीं।
दूसरा बड़ा थीम है अर्थ की आजीवन खोज, जिसे रूसी में पोइस्की बोगा यानी ईश्वर की खोज भी कहते हैं।
हाँ, अपनी जवानी की डायरी से लेकर आखिरी सफर तक वो लगातार इस सवाल से जूझते रहे कि मौत के सामने जिंदगी का क्या मतलब है। वो कभी भी ऐसी जिंदगी को स्वीकार नहीं कर पाए जिसका कोई अंतिम उद्देश्य न हो। ये तलाश उनकी रग रग में बसी थी।
तीसरा, बनावटीपन की आलोचना बनाम कुदरत का जश्न। उन्हें सभ्य ऊंचे तबके के समाज पर गहरा शक था।
हाँ, उसे वो बनावटी, खोखला और नैतिक रूप से दिवालिया मानते थे। उनके उपन्यासों में सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को के रईसी ड्राइंग रूम का मजाक उड़ाया जाता है।
और इसके उलट उन्होंने कुदरती जीवन को आदर्श माना। किसान की सहज बुद्धि, जैसे वॉरन पीस में वो प्लैटिनिन करातेव का किरदार।
हाँ याद है।
खेती बाड़ी की मेहनत, जन्म और मृत्यु का चक्र और प्रकृति की सादगी भरी सुंदरता।
चौथा, मौत का खौफ और रहस्य। टॉलस्टॉय बचपन से ही मौत के ख्याल से ग्रस्त थे। नाकीची दिखाती हैं कि ये थीम उनके लेखन में कैसे बार बार उभरता है।
हाँ, सेवस्तपुल स्केचेस में युद्ध की भयानक मौतें, प्रिंस आंद्रेई का मृत्युशैया पर वो आध्यात्मिक बदलाव,
और आखिर में इवान इलिच का वो भयानक हिसाब किताब जो उसे मौत के सामने करना पड़ता है। टॉलस्टॉय के लिए जिंदगी को सही मायने में तभी समझा जा सकता था जब उसे मौत के आईने में देखा जाए।
पांचवा है, कला की नैतिक ताकत और उसका खतरा भी।
ये बड़ा दिलचस्प है। मतलब अपने करियर के ज्यादातर हिस्से में टॉलस्टॉय मानते थे कि कला में एक अनोखी ताकत होती है। वो पाठक को लेखक की सच्ची भावनाओं से संक्रमित कर सकती है, जिससे सहानुभूति और नैतिक समझ पैदा होती है।
लेकिन बाद में वो बदल गए।
हाँ, अपने आध्यात्मिक बदलाव के बाद उन्होंने व्हाट इज आर्ट नाम की किताब में एक बहुत ही कट्टर नजरिया पेश किया। उन्होंने अपनी महान रचनाओं समेत दुनिया की ज्यादातर कला को अभिजात्य, पतनशील और नैतिक रूप से नुकसानदेह कहकर खारिज कर दिया।
कमाल है, अपनी ही रचनाओं को।
हाँ, उनका तर्क था कि सच्ची कला वो है जो सबके लिए सुलभ हो और धार्मिक, मतलब ईसाई चेतना को जगाए। यह अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास था।
छठा विषय है त तन और मन का लगातार संघर्ष।
हाँ, नैप टॉल्स्टॉय के अंदर की इस कश्मकश पर रोशनी डालती हैं। एक तरफ उनकी जबरदस्त शारीरिक भूख, खाना पीना सेक्स, और दूसरी तरफ रूहानी पाकीजगी और तपस्या की तीव्र इच्छा।
ये अंदरूनी लड़ाई उनकी किरदारों के भी दिखती है, जैसे फादर सर्जियस।
बिल्कुल, जो प्रलोभन से बचने के लिए खुद को क्षत विक्षत कर लेते हैं, और द क्रोएसा सोनाटा का तो ये केंद्रीय धधकता हुआ विषय है जिसमें वो रोमांटिक प्यार और कामुकता की तीखी निंदा करते हैं।
और आखिर में सातवां, उनका कट्टर ईसाई अराजकतावाद और अहिंसा।
हाँ, ये टॉल्स्टॉय के जीवन के बाद के हिस्से का मुख्य संदेश था। उन्होंने हर तरह की जबरदस्ती वाली सत्ता, सरकारें, कानून, पुलिस, फौज, अदालतें, सबको पूरी तरह नकार दिया।
उनका मानना था कि ईश्वर का साम्राज्य कहीं बाहर नहीं
बल्कि इंसानों के अंदर है, और उसे सिर्फ ईसा मसीह के प्रेम और क्षमा के रास्ते पर चलकर ही पाया जा सकता है। ये उनकी सबसे क्रांतिकारी और दुनिया बदलने वाली विरासत थी।
नैप के विश्लेषण से कुछ बहुत गहरी बातें निकल कर आती हैं। जैसा आपने कहा, एक जो मुझे खास लगी वो ये है, टॉल्स्टॉय के महान उपन्यास उनकी जिंदगी से भागने का रास्ता नहीं थे, बल्कि जिंदगी के साथ और ज्यादा गहराई से और अनुशासन से जुड़ने का तरीका थे। उन्होंने कहानी कहने को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया, जिसमें वो अपनी सबसे जरूरी दार्शनिक और आध्यात्मिक परिकल्पनाओं को परखते थे।
ये वही जिंदगी और कला के जुड़ाव वाली बात है। बिल्कुल, और उनके अंदर के संघर्ष के बारे में ये कहना भी कितना सटीक है। टॉल्स्टॉय के वजूद का बुनियादी विरोधाभास एक ऐसे इंसान का था जिसमें जबरदस्त शारीरिक और इंद्रियजनित जीवन शक्ति थी, लेकिन जो बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से उसी शरीर और दुनिया को नकारने के लिए प्रेरित था जिसमें वो इतनी शिद्दत से जीता था।
हाँ,
तन और मन के बीच की ये जंग उनकी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और उनके सबसे गहरे निजी दर्द दोनों का स्रोत थी। ये बात उन्हें इतना मानवीय बना देती है ना?
बिल्कुल, कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि एक जटिल संघर्ष करता हुआ इंसान।
फिर उनके धर्म परिवर्तन के बारे में ये विचार। धर्म परिवर्तन के बाद टॉल्स्टॉय ने अपनी शोहरत की इमारत को ढहाने की कोशिश की, अपनी महान रचनाओं को उपलब्धियों के तौर पर नहीं बल्कि नैतिक विफलताओं के रूप में देखते हुए। फिर भी वही हद दर्जे का जुनून जिसने उन्हें वॉर एंड पीस लिखने के लिए प्रेरित किया था, अब एक पूरी तरह से नैतिक जीवन जीने की उनकी खोज में लग गया था। एक ऐसी परियोजना जो उनके किसी भी उपन्यास की तरह ही महाकाव्यात्मक और अंततः दुखद साबित हुई।
मतलब शिद्दत वही रही, बस दिशा बदल गई।
और टॉल्स्टॉय के खुद के कहे कुछ वाक्य भी नहीं भूलने चाहिए जिनका नैप जिक्र करती हैं।
जैसे,
हर कोई दुनिया बदलने की सोचता है लेकिन कोई भी खुद को बदलने की नहीं सोचता।
क्या बात है।
नैप इसका इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करती हैं कि टॉल्स्टॉय का जोर पहले खुद को बदलने पर था। आज भी ये बात कितनी लागू होती है।
या फिर ये गलत इसलिए गलत होना बंद नहीं हो जाता क्योंकि बहुमत उसमें हिस्सा लेता है।
वाह, ये भीड़ से अलग खड़े होने के उनके नैतिक साहस को दिखाता है। बताता है कि सच की तलाश में कई बार अकेले चलने का हौसला रखना पड़ता है। तो आज हम अपने लिए टॉल्स्टॉय पर नैप की इस गहरी नजर से क्या सीख सकते हैं? क्या लगता है?
मेरे ख्याल से एक अहम बात है खुद का ईमानदारी से सामना करने का साहस। आज की हमारी ये जो सोशल मीडिया वाली दुनिया है जहां हम अक्सर अपनी सबसे अच्छी सजी संवरी छवि पेश करते हैं।
हाँ, बिल्कुल।
टॉल्स्टॉय की अपने साथ की वो निर्मम ईमानदारी हमें असलियत की तरफ खींचती है। शायद डायरी लिखना एक तरीका हो, या बस खुद से मुश्किल सवाल पूछना कि हम जो जी रहे हैं क्या वही सच है।
बिल्कुल, और दूसरा है समाज के तौर तरीकों पर सवाल उठाना। टॉल्स्टॉय ने कभी चीजों को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो वैसी ही चली आ रही थी।
हाँ।
या आज के दबावों, चाहे वो उपभोक्ता संस्कृति हो, करियर के बने बनाए रास्ते हो, या राजनीतिक सोच हो, इन सब पर गहराई से सोचने का एक मॉडल है। क्या ये चीजें वाकई एक सार्थक जीवन की तरफ ले जाती हूँ?
तीसरा, रोजमर्रा की जिंदगी में मतलब ढूंढना। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। टॉल्स्टॉय के किरदारों को अक्सर खुशी बड़ी बड़ी योजनाओं में नहीं बल्कि छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजों में मिलती है।
जैसे लेवन का खेत में घास काटना।
हाँ, या नताशा का अपने परिवार के लिए वो सहज प्यार। ये याद दिलाता है कि गहरी संतुष्टि अक्सर साधारण मानवीय रिश्तों, अपने काम से लगाव और प्रकृति की कद्र करने से मिलती है, न कि सिर्फ अनोखे या असाधारण अनुभवों से।
और चौथा, सहानुभूति की ताकत जो उनके लेखन से सीखी जा सकती है। टॉल्स्टॉय हमें मजबूर करते हैं कि हम अलग अलग तरह के दर्जनों किरदारों के मन में उतरें, उनकी नज़र से दुनिया देखें। दूसरों के नजरिए को समझने की ये कोशिश हमारे रिश्तों को बेहतर बना सकती है और ये जो हम बनाम वो वाली सोच है उसे कम कर सकती है।
हाँ।
और हाँ, पांचवा, अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांत जो सामाजिक बदलाव की लड़ाई में आज भी उतने ही प्रासंगिक है।
तो मेरे लिए नैप के नजरिए से सबसे बड़ा सबक यह है कि प्रतिभा कोई आसान चीज नहीं होती, ये अक्सर एक संघर्ष होती है। टॉल्स्टॉय की ताकत उनकी विरोधाभासों से और एक प्रामाणिक जीवन जीने की उनकी कभी न खत्म होने वाली अथक मांग से आती है। आप कला को उस अंदरूनी जंग से अलग नहीं कर सकते जिसने उसे पैदा किया।
और मेरे लिए जो बात सबसे खास है वो है उनका जिंदगी को अलग अलग खानों में बांटने से इनकार। कला, आस्था, रोजमर्रा का जीवन सब एक ही तलाश का हिस्सा थे। वो बड़े सवालों को सबके लिए जरूरी और व्यवहारिक बना देते हैं, न कि सिर्फ दार्शनिकों के लिए।
हाँ।
नेपियो इस महान, लगभग डराने वाले व्यक्तित्व को मानवीय और हमारे करीब महसूस कराती हैं। वो दिखाती हैं कि उनकी विरासत सिर्फ उनके उपन्यास नहीं है, बल्कि वो कट्टर और समझौता न करने वाली जांच में जिया गया जीवन। वो अपने आप में एक शक्तिशाली मिसाल है। शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि एक सच्चा जीवन जीने के लिए लगातार खुद को विकसित करने और सवाल पूछते रहने की जरूरत है। ये कभी खत्म न होने वाली प्रक्रिया है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।